ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को लगभग हर मुरली में इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। इस कलयुगी दुनिया के कितने नाम बाबा वर्णन करते हैं। ये कलयुगी दुनिया क्या है? रौरव नरक है, विषय वैतरणी नदी है, न जाने कितने कड़े कड़े शब्द बाबा इस कलयुगी दुनिया के लिए कहते हैं। तो आज भी बाबा ने वैराग्य दिलाया है। कैसे, क्या शब्द कहा है? ये दुनिया कब्रिस्तान है। अब कब्रिस्तान से कोई दिल लगाता है क्या? कब्रिस्तान से तो कोई दिल नहीं लगाता है। क्यों बाबा इसको कब्रिस्तान कहते हैं? क्योंकि अभी हम परिस्थान में जा रहे हैं। तो परिस्थान को याद करो, इस कब्रिस्तान को याद मत करो। तो परिस्थान में कौन रहते हैं? परियां रहती है। तो हम परियां बनती है, कैसे बनते हैं परियां? डबल लाइट बनकर, उमंग उत्साह के पंख लगाकर, बेहद की वैराग्य वृत्ति के पंख लगाकर, अचल अडोल स्थिति के पंख लगाकर हम उड़कर अपने परिस्थान पहुंचेंगे। तो आज बाबा ने बहुत वैराग्य दिलाया है इस कलयुगी दुनिया के लिए। और बाबा कहते हैं जो मेरे गरीब बच्चे हैं उनको तो जल्दी वैराग आ जाता है, वो जल्दी मुझे याद करने लगते हैं। परंतु जो धनवान है, करोड़पति होंगे धनवान है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये। ज्ञान को भी समझना मुश्किल है, बाबा को याद करना भी मुश्किल है। क्यों? उनकी बुद्धि तो दुनियावी बातों में ही लगी रहती है। लेकिन गरीब बच्चे बाबा के बहुत भाग्यशाली है। तो हम सब बाबा के वो गरीब बच्चे हैं ना। हमारे पास कोई करोड़ों तो कुछ है नहीं, और जो कुछ भी था वो तो सब बाबा को ही अर्पित किया या बाबा का ही है। तो हम उससे कोई बाबा के श्रीमत के विरुद्ध तो कोई कार्य नहीं करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम गरीब बच्चे हो, बहुत भाग्यशाली हो, है ना। हम सब भाग्यशाली, कोई भी नहीं होगा जो अरबपति होगा, यहाँ सब साधारण है। लेकिन हम क्या से क्या बन रहे हैं वो बाबा हमें सुनाकर नशा चढ़ाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 15/5/2026 है। मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। चित्र निकालो, कैसे ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ। तो क्या करो? परिस्थान को याद करो। ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्थान को याद करो। कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना, ये सहज है या मुश्किल है? जो समझते बहुत सहज है, वो हाथ उठाओ, है ना। जो समझते थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। हे, अच्छा, हाथ उठा रहे। मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये तो अपने मन की स्थिति है, इससे दिल लगाओ या दिल हटाओ। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, चाहे कितना भी अरबपति क्यों ना हो। तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी, समझो आएंगे थोड़ा पढ़ेंगे भी, तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। अंत में बहुत कुछ याद आ जाए तो वो कितना बदनसीब है, पर अंत में केवल एक बाबा याद आए उसके लिए तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए ना, बहुत काल से बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं वही खुश नसीब है जिनको अंत में और कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत है, बहुत पुराना गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए बनकर मुकद्दर फूट न जाए, कुछ ऐसा है, बनकर मुकद्दर फूट न जाए। इतना बड़ा मुकद्दर माना भाग्य, इतना बड़ा भाग्य हम बना रहे हैं तो क्यों? क्योंकि शिव बाबा हमारा सहारा है। लेकिन बहुत ध्यान रखना है, कहीं ये सहारा टूट गया तो जो बन रहा है हमारा भाग्य वो कहीं फूट न जाए। तो ऐसे ऐसे भी गीत बने हैं। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर ये जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है, सोचो सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है ना, अर्थात कब्र दाखिल होना माना मिट्टी में मिल जाना। तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है इस कलयुगी दुनिया का, इसलिए बाबा कहते कब्र दाखिल होना है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है, भारत में इतना डर नहीं है, विदेशों में तो बहुत डर है कई जगह कि कहीं हमारे ऊपर बॉम्ब न गिरे, हमारे ऊपर कुछ गिरे नहीं। कितने देशों में बंकर बना दिए हैं कि अगर सायरन बजे कि कहीं बॉम्ब गिरने वाला है तुरंत वो बंकर में छिप जाओ, डर ही डर है। तो बाबा कहते हैं कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो क्या होगा, क्या होगा? बाबा कहते हैं घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि भाग्य भविष्य का तो बना नहीं सकेंगे। अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगी तो यहीं मन जाएगा, तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले माफी कोई नई बात नहीं है, सो भी कल्प पहले माफी ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए कि हम कल्प पहले माफिक बेहद के बाप से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो ये भी मनमना भाव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। सब एक ही भारत था सतयुग में और वही परिस्तान कहलाता था। तो बाबा कहते और कोई खंड थे ही नहीं, इसीलिए और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। ये है माया रावण का पंप, ये थोड़ा समय चलने वाला है। बहुत पॉम्प है ना दुनिया में, कितना पॉम्प है, शो। मुंबई को तो कहते ही है मायावी नगरी। एक तरफ तो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें टावर्स बनते जा रहे हैं और दूसरी ओर देखो तो झुग्गी झोपड़ियां। तो वो झुग्गी झोपड़ियां भी देखते हैं लोग और बड़े बड़े टावर्स भी देखते हैं मुंबई में। तो बाबा क्या कहते हैं, ये सब कब्र दाखिल होना है। तो बाबा कहते हैं ये है माया रावण का पंप, ये थोड़ा समय चलने वाला है। ये है क्या, झूठा शो, झूठा शो, झूठी माया झूठी काया है ना, ये पिछाड़ी का भबका है। कई बार होता है ना जब कोई व्यक्ति मरने के नजदीक होता है तो वो कई बार ऐसे लगता है जैसे एकदम अच्छा हो गया, एकदम अच्छा हो गया। कहां एकदम होपलेस केस था और एकदम अच्छा हो गया, और फिर देखो तो ओम शांति, अच्छा हो गया। जैसे बल्ब भी होता है उसको अगर फ्यूज होना है तो एकदम लाइट बढ़ जाती है और फिर देखो फ्यूज हो जाती है। तो ये भी बाबा कहते इस समय पंप और शो जो है ये अंत का शो है, ये पिछाड़ी का भबका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है और ये पहले नरक था। ये मोटर गाड़ियां हवाई जहाज ये कुछ भी नहीं थे, अभी तो स्वर्ग है समझते हैं और पहले ये नहीं था तो नरक था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, ये 100 वर्ष का शो है, ये सब 100 वर्ष के अंदर बनाए। टेलीफोन बिजली एरोप्लेन आदि ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं, कितना शो है। इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्यों थी, दिल्ली पुरानी क्या थी, पुरानी दिल्ली और फिर नई दिल्ली थोड़ी बनी तो सोचा ये नई दिल्ली तो बहुत सुंदर है। अभी भी भले नाम नई दिल्ली है लेकिन वो पुरानी से कोई बहुत सुंदर नहीं है, वो भी पुरानी जैसी हो गई। तो दिल्ली पुरानी क्या थी, अब नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है, नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्थान हो, ये तो टेम्पररी पॉम्प है, पॉम्प शो। कितने बड़े बड़े मकान फाउंटेन आदि बनाते हैं, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। आर्टिफिशियल स्वर्ग बहुत बनाते हैं, अब दुबई जाइए, दुबई में तो कितना आर्टिफिशियल स्वर्ग है और नीचे देखो तो रेगिस्तान है, बिल्कुल एकदम रेत ही रेत है वहां पर, ऊपर तो इतने सुंदर बगीचे बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम तो नरक है। नरक का भी एक शो है, नरक का भी एक शो है, ये है अल्पकाल का शो। ये अभी गया की गया, इसको बाबा कई बार शब्द देते तिलसम का खेल, एकदम इतना सुंदर और फिर देखो गया की गया, ये अभी गया की गया। अब बाप बच्चों को कहते हैं, एक तो शांति धाम को याद करो, वैराग्य तो आ गया पर करो क्या, क्या नहीं करो वो तो बाबा ने बताया। तो बाबा कहते एक तो शांति धाम को याद करो, सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी। अब ये सवाल तो सारी दुनिया का है, चाहे वो करोड़पति हो अरबपति हो, उसका भी ये सवाल है शांति कहाँ से मिलेगी। ये सवाल तो सारी दुनिया का है, दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। शांति ढूंढ रहे हैं लेकिन हम सब उसी शांति धाम के रहने वाले हैं, ये किसको पता ही नहीं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती है, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है कि हम सब शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर वहां से यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो ही नहीं सकती है, ये है ही दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। तो इन बातों की समझ अब तुम बच्चों को आई है ना, सब सारी समझ आ गई है, सब समझ तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में अब आया है। क्या क्या आया है कि बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं ये सब राज समझाते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं, भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था, तो तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है बाबा की मुरली से, हम रोज रिफ्रेश होते हैं। बाप और वर्षे को याद करो, भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है, हमेशा अंगुली दिखाते ऊपर, धर्म पिताओं को भी दिखाए ना अंगुली ऊपर करते हुए कि अब उसको याद करो। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है, हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा अथवा अल्लाह वहां है। परंतु सिर्फ ऐसे याद करने से कुछ होता थोड़ी है, चलो ऐसे किया ऊपर वाले को याद करो, पर तो ऐसे कहने से थोड़ी कुछ होता है। उनको ये भी पता नहीं है कि याद से क्या फायदा होगा, चलो उनको याद करो कहा जरूर लेकिन उससे फायदा क्या होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, वो कौन है जिसको कहते याद करो, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं हे राम, अब ये कौन याद कर रहा है, आत्मा याद करती है हे राम। परंतु उनको ये पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है, सुख शांति किसको कहा जाता है ये पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान है तो फिर दुख क्यों होना चाहिए, सब एक बाप की संतान है तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए, हम उसे एक बाप के बच्चे हैं और उनसे सुख का वर्षा मिलता है तो दुख क्यों होना चाहिए, ये भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वो आते भी भारत में ही हैं, परंतु ये कोई समझते नहीं है कि भगवान भारत में आते हैं। बाबा कहते ये भी कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी? स्थापना पहले होगी ना, तभी तो सतयुग बनता है। सतयुग में कैसे होगी? परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं हैं। वो तो बाप ही नॉलेजफुल है जो समझाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ ये बाप ही समझाते हैं, और किसको पता ही नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर दिया है। तो तुम बच्चों को चित्रों पर समझाना है, भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने कैसे राज्य पाया, कब ये राज्य पाया ये भी नहीं जानते। किससे पाया, कब पाया, कैसे पाया, हाँ बाबा कहते कुछ नहीं जानते। सिर्फ कहते लक्ष्मी नारायण के लिए सिर्फ क्या कहते हैं, कब राज्य पाया, कैसे पाया, किसके द्वारा पाया, तो बाबा कहते ये तो जानते नहीं। बाकी क्या जानते हैं? सिर्फ ये जानते हैं कि ये सतयुग के मालिक थे, इतना समझते हैं। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्प काल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है, भावना का भाड़ा मिल जाता है उनको कुछ न कुछ। कोई दान पुण्य करते हैं उनको भी अल्प काल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। सतयुग में गरीब पंचायत के मुखी जो होंगे ना, वहाँ भी तो होगी ना पंचायत, गांव भी तो होंगे ना, तो गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति है परंतु कितने दुखी है। सतयुग में सब सुखी होंगे और अभी करोड़पति है तो भी कितने दुखी है। अभी तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके। कैसी विडंबना, यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, नाम मान शान मर्तबा उनको सब कुछ है, पर बाबा कहते हैं वो कभी भी सतयुग का ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जो गरीब है वही साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो वो तो अनपढ़ है, इस ज्ञान में तो वो सब अनपढ़ है। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी, ये ज्ञान बाबा का चलो थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में नहीं रह सकेंगे। मन उनका भटकता रहेगा, मकान जमीन जायदाद धन संपत्ति न जाने क्या क्या सब में उनकी बुद्धि भटकती रहेगी। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकेंगे। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। तुम जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए ये जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए, जो भी नौकरी धंधा जो कुछ भी करते हैं बाबा कहते हैं सब थोड़े समय के लिए। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, बहुत बनाते हैं धर्मशालाएं। अब वो कोई धंधे के लिए नहीं बनाते, सेवा के लिए बनाते ना। धन है तो समझते हैं कि थोड़ा दान पुण्य करें तो धर्मशालाएं बनाते हैं जहां कहीं आकर के थोड़ा विश्राम करेंगे, तो वो कोई धंधे के लिए नहीं बनाते, धन नहीं कमाते, वो वहाँ कोई किराया नहीं देते हैं, वो फ्री होता है, धर्मशालाओं में रहते हैं एक दो दिन, वो कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ होते हैं वहाँ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे। अब तीर्थों पर जाते हैं तो कोई सब जगह होटल हो ये जरूरी नहीं, धर्मशालाएं होती है, और कई बार तो धर्मशालाएं तो फ्री होती है और उनको पैसा नहीं देना पड़ता है। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहें। इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं, तीर्थ स्थानों के आसपास धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर के व्यापार करें उनके लिए धर्मशाला है, नहीं, गरीबों के लिए धर्मशाला है। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर देखो, बड़े से बड़े तीर्थ हैं, कितने बड़े से बड़े तीर्थ हमारे सेंटर्स बन गए हैं, सब जगह रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वे बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। मधुबन सबसे बड़ी गीता पाठशाला कहो या हाँ क्या कहेंगे, रिट्रीट सेंटर को, या तो ऐसे ही है ना, कितने बड़े बड़े नीचे सरोवर है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम है, आत्मा की कमाई करते हैं, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए ये भी धर्मशाला है, बच्चे आके रहते हैं, विश्राम पाते हैं, तो जैसे ये भी धर्मशाला है। बड़े से बड़ा तीर्थ है मधुबन। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। मधुबन सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं, ये भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, जाते हैं ना मंदिर में तो वहाँ चरणामृत मिलता है, समझते हैं इनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वो तो पानी है। पंचामृत कहते हैं, पांच चीजें उसमें डालते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। शिव के मंदिर में जाते हैं, शंकर का बड़ा लिंग, शंकर की मूर्ति होती है, तो उनके आगे ऐसे झोली फैलाते हैं और कहते हैं भर दे झोली, हाँ बम बम भर दे झोली। तो बाबा कहते हैं हाँ, समझते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। अब कौन सी झोली शिव बाबा भरते हैं, कौन सी झोली भरते, ऐसे नहीं कि कोई उसमें हीरे जवाहरात डालेंगे झोली में, शिव बाबा कौन सी झोली भरते हमारी, ज्ञान रत्नों से। तो बाबा कहते हैं तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, बाकी अमरनाथ कोई एक तो थोड़ी, अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठ करके कथा सुनाएगा। शंकर अमरनाथ कहते उनको, तो क्या केवल एक पार्वती को ही कथा सुनाएगा क्या, तो केवल एक को थोड़ी बैठ कथा सुनाएगा, जरूर बहुत होंगे, और वो भी मृत्यु लोक में ही होंगे, वो भी मृत्यु लोक में ही होंगे जिनको अमर कथा सुनाएगा। अमर लोक में थोड़ी अमर कथा की जरूरत है, अमर कथा की जरूरत कहाँ है, मृत्यु लोक में। तो मृत्यु लोक में आकर के अमर कथा सुनाएंगे। सूक्ष्म वतन में भी कथा सुनाने की दरकार नहीं है। सूक्ष्म वतन में शंकर कहाँ वो बैठ के अमर कथा सुनाएंगे, तो है मृत्यु लोक में सुनाते हैं शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं है। अनेक तीर्थ बनाई है यहाँ, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। सब कितने जाते साधु संत महात्मा है तीर्थों पर, अमरनाथ पर भी लाखों आदमी जाते हैं। कोई गया है अमरनाथ आप में से? जो अमरनाथ गया है हाथ उठाओ। कोई नहीं गया है हा? वो देखो एक हाथ उठा रहे, उठ के खड़ी हो जाओ। अच्छा उठो उठो, अमरनाथ गए हैं आप? अच्छा वेरी गुड, भाई अमरनाथ गए हैं, मुबारक दो इनको अमरनाथ की यात्रा की है, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। अभी तो कितना डर रहता है, कितनी सिक्योरिटी अभी होती है, भले गवर्नमेंट कहती है जाओ, लेकिन कितनी सिक्योरिटी। अचानक कहीं आतंकवाद आ जाए, आतंकवादी आ जाए, कुछ पता नहीं चलता, तो डर भी बहुत है। तो बाबा कहते हैं अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं, कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। कुंभ का मेला लगता है, करोड़ों करोड़ों मनुष्य जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे, वास्तव में कुंभ का मेला सच्चा कहाँ है? यहाँ जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। वास्तव में कुंभ का मेला तो ये है, वो मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापिस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते। कितने भी कुंभ मेले में जाकर गंगा स्नान या स्नान करे, लेकिन बाबा कहते कोई भी वापिस अपने घर जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब तो जा सके। अब आत्मा तो पवित्र नहीं बनी, चलो शरीर को शुद्ध किया तो परमधाम कैसे जा सकेंगे? तो वापिस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब तो जा सके, परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, आत्मा को पंख मिले हैं ना। अभी सबको पंख है ना, परियां बन रहे हैं, डबल लाइट स्थिति माना, आत्मा को जैसे पंख मिल गए। आत्मा को पंख मिले हैं, योग में रहने से आत्मा सबसे तीखा उड़ती है। बाबा की याद में एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, मन बुद्धि से परम धाम, सत्युग, सूक्ष्म वतन, कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है, कोई का हिसाब किताब। अब आत्मा जब शरीर भी छोड़ती है, बाबा बताते हैं कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे। कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे। एक माता अपना अनुभव सुना रही थी कि हम अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, दोनों युगल थोड़ा बहुत ज्ञान में थे, तो अमेरिका जाने की युग, और फिर अचानक उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो सारा दिन अमेरिका 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 याद कर रहा था। तो जब बाबा के पास आई तो मधुबन भी आई वो, कि वो अमेरिका अमेरिका बहुत याद कर रहा हो था, तो जरूर वो अमेरिका में ही उसने जन्म लिया होगा। क्योंकि वो अंत में अमेरिका जाना है अमेरिका जाना, और अचानक हार्ट फेल हो गया तो अमेरिका में उनकी आत्मा गई होगी। तो उनको पता चला उनके कोई रिश्तेदार हैं, जो उनकी जो बहू है वो गर्भ से है, तो कहा ये वहीं गया होगा, वो ही आत्मा वहीं गई होगी। तो खास अमेरिका गई वहां देखने कि मेरे लौकिक पति ने वहां तो जन्म नहीं लिया है। अब कैसे पता चले, लेकिन मनुष्य बाबा कहते हैं आत्मा को कहीं भी जाने में कितनी देर लगती है। तो ढेर सब हाँ, तो बाबा कहते हैं जब तक तो कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं। आत्मा को उड़ने में तो एक सेकंड लगता है, लेकिन मुक्ति धाम में कब जा सकेंगे? मुक्ति धाम में नहीं जा सकेंगे, अमेरिका इंग्लैंड जा सकेंगे, लेकिन मुक्ति धाम में कब जाएंगे? मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे है, टिक हुई ये गई, कितनी देर लगती है आत्मा को शरीर से निकलने, एक सेकेंड। आत्मा भी ऐसे है, टिक हुई ये गई, इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। ढेर के ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है, आत्मा को कहां का कहां पहुंचने में देर थोड़ी लगती है। मनुष्य ये बातें समझते नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहां बहुत सुखी होंगी, थोड़ी भी होंगी और बहुत सुखी भी होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई है। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि ऐसे नहीं चलती है जैसे हम बच्चों की बुद्धि चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने थे, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, लेकिन शिव बाबा इनके ऊपर है, इनको रचने वाला, वो दिखाते नहीं है, उनमें शिव को दिखाते नहीं है। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अच्छा कौन कराते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना? शिव बाबा। फिर विष्णु द्वारा पालना, तो सब ये कराने वाला कौन? तो उनसे भी ऊंचा शिव बाबा। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो, किस लिए लायक बन रहे हो ब्राह्मण? देवता बनने के लिए। अभी तुम वो पाठ बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे, अभी बजा रहे हो कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, तुम कहते हो हम पवित्र बनते हैं, हम क्या कहते हैं? बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो। तो क्यों पवित्र बनते हैं? क्योंकि बाबा का फरमान है कि काम रूपी शत्रु को जीतो, माम एकम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है भी, तो भी इस सुख को क्या कहते हैं बाबा? काग विष्टा समान, अल्पकाल का सुख। भक्ति में साक्षात्कार होता है सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आश पूरी होती है, भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए तुम्हारी आश पूरी होती है, चलो साक्षात्कार हुआ भी। ये साक्षात्कार होता है वो भी मैं कराता हूँ, भगवान को नाज है, मैं कराता हूँ साक्षात्कार। अब देवी का भक्त होगा, देवी का उनको साक्षात्कार हुआ तो देवी थोड़ी कराती है, कराता तो शिव बाबा ही है। तो बाबा कहते वो भी मैं कराता हूँ। ड्रामा में ये नूंद है, जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है, ऐसे नहीं कहते अभी शूट हुआ, अभी शूट नहीं हुआ है, वो तो ड्रामा बना बनाया, इसलिए फिर क्या कहते बनी बनाई बन रही है, जो बनी बनाई है वही चल रही है, अब कुछ बननी नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, नहीं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है, मोक्ष को कोई भी नहीं पाते हैं। सन्यासी लोग कहते हम लीन हो जाते हैं, कोई भी सन्यासी शरीर छोड़ता है उसके लिए यही कहा जाता है ब्रह्म लीन हो गया, कभी नहीं कहेंगे स्वर्ग सिधारा या मर गया, ब्रह्म लीन हो गया। तो बाबा कहते हैं सन्यासी लोग कहते हम लीन हो जाते हैं, अब बाप क्या समझाते हैं, वो कहते हम लीन हो जाते हैं, और बाबा समझाते हैं तुम तो अविनाशी आत्मा हो, अब लीन हो गई तो अविनाशी हो गई ना, अब बूंद है सागर में मिल गई तो उस बूंद का उस रूप से तो अस्तित्व नहीं रहा ना, तो फिर तुम तो अविनाशी आत्मा हो, आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, वो चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं सतयुग के एकदम आदि में, जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वो ही 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सके, बाद में आने वाले थोड़ी 84 जन्म लेंगे, सब तो ले न सके, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं फिर सुख शांति का वर्षा देते हैं, क्योंकि सुख शांति का आधार पवित्रता है, यही कहते हैं ना पवित्रता सुख और शांति की जननी है, तो पवित्र बनाते हैं फिर बाबा कहते हैं सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता, तो बाप कहते हैं आयुष्वान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, कितने वरदान मिलते हैं, अब बाबा ये सब वरदान देते हैं। फिर बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात कह दी है, वास्तव में कि निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे न सके, सब जो निवृत्ति मार्ग वाले के आशीर्वाद देवे धनवान भव, अब खुद तो सन्यासी ये सब छोड़ दिया, और खुद छोड़ दिया और फिर कहे कि धनवान भव या कहे पुत्रवान भव, खुद तो अपने पुत्रों को छोड़ दिया तो सन्यास कर लिया, तो उन्होंने तो सब छोड़ दिया, अब वो वरदान कैसे देंगे, उन्होंने तो अपना ही सब कुछ छोड़ दिया। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो आयुष्वान भव धनवान भव, अब निवृत्ति मार्ग वाले ऐसा आशीर्वाद दे न सके, क्यों न दे सके, क्योंकि उन्होंने तो सब छोड़ दिया है, तो जो जिन्होंने खुद ही छोड़ा है वो उसका आशीर्वाद क्या देंगे। तुम बच्चों को तो बाप से वर्षा मिल रहा है, सतयुग त्रेता है सुख धाम, फिर दुख धाम कैसे होता है ये भी कोई नहीं जानते, देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वो निशानियां हैं, है ना, खजुराव में जाइए वहां ये सब निशानियां, तो जगन्नाथपुरी में भी पहले था, अभी तो शायद नहीं है, सब निकाला है, निकाल दिया है, ये निशानियां हैं, जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र हैं, ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है कि देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार, अभी संगम पर तुमको ये नॉलेज है, बाप है नॉलेजफुल, तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु तीनों एक में ही है ना, ये सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमारा बाप भी है, वर्षा देने वाला, फिर टीचर भी है, पढ़ाते हैं। ये बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो। वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी कह दिया तो सब बाबा कहते हैं सब कुछ, कुछ समझ में नहीं आएगा इसका अर्थ क्या है। वो तो कह देते सर्वव्यापी है और तुम कहते हो कि वो पतित पावन है। पतित पावन है तो फिर सर्वव्यापी है तो फिर सब पावन हो गए। लेकिन पतित है तो पतित पावन आता है पावन बनाने। तो कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेज फुल बने हो। नंबर वार जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको ये बताते हो, बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं, तुम फिर दूसरों को सिखाते हो। तुम भी सबको ये बताते हो कि बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति से जहां चाहो वहां चलाते हो ना, व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को भी जहां लगाने चाहो वहां लगा सको। इससे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। हाथ पैर जहां चाहो वहां लगा सकते हो और तो मन बुद्धि को भी जहां चाहो वहां लगा सको, इसको कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो, इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय अथॉरिटी वाले। स्लोगन, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। व्यक्ति इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कैसे करेंगे? आपके एक रस अचल स्थिति का ही ये अचलगढ़ यादगार है। देखा है ना माउंट आबू में अचलगढ़, गुरु शिखर के ही पास है, तो ये अचलगढ़ यादगार है आपकी अचल एक रस स्थिति का। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। एक रस अवस्था माना एक के रस में रहना। क्यों शब्द की निशानी क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है। एक रस में रहो तो क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये प्रश्न ही नहीं उठेंगे। जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रह सकेंगे। एक की रस में रहो फिर ड्रामा, हाँ बाबा कहते हैं ड्रामा के ऊपर अडिग रहो तो ये क्या क्यों ये सब क्वेश्चन समाप्त। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो हम सब, चलो बाबा की याद में रहेंगे।